नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, भारत अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला देश है और वैश्विक खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। केरल में भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले में तलाशी अभियान 5वें दिन भी जारी। सेना मलबे के गहरे नीचे दबे लोगों की तलाश शुरू करेगी। बांग्लादेश में आरक्षण प्रदर्शनकारियों ने अपनी 9 सूत्री मांग को लेकर कल से देशव्यापी असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला देश है और वह वैश्विक खाद्यान्न सुरक्षा और वैश्विक पोषण सुरक्षा कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार सुधारों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रही है और इसका उद्देश्य किसानों के जीवन में सुधार लाना है। आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि सरकार की आर्थिक नीति का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत मोटे अनाज, दूध, दाल और मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2024-25 के केंद्रीय बजट में सतत कृषि पर ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जलवायु अनुकूल फसलों की 1900 नई किस्में उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि देश के कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में एक क्लिक से पैसे पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश में कृषि शिक्षा के क्षेत्र के लिए 500 से अधिक कॉलेज और 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को नई प्रौद्योगिकी के बारे में सूचना उपलब्ध करा रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की कृषि विकास दर विश्व में लगातार सबसे अधिक बनी हुई है। उन्होंने भुखमरी और कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करने, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और बढ़ते तापमान के कारण उत्पादन में कमी जैसे गंभीर मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का आज आखिरी दिन है। इसका उद्देश्य नागरिकों को यथासंभव सरल और त्वरित न्याय प्रदान करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह पहल की है। लोक अदालत सुलभ और कुशल न्याय प्रदान करती है जो त्वरित और किफायती होती है। समारोह को संबोधित करते हुए कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस लोक अदालत में 1000 से अधिक मामलों का निपटान किया गया। समारोह में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भी लोक अदालत की पैनल संरचना के बारे में बताया। केरल के वायनाड जिले में हुई भीषण भूस्खलन के बाद सेना लगातार मानवीय सहायता तथा राहत और बचाव कार्य में लगी है। 1300 बचाव कर्मियों ने भारी मशीनरी और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ आज 5वें दिन तलाशी अभियान शुरू किया। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य एजेंसियों के लोग आपदा प्रभावित क्षेत्र में शवों की तलाश कर रहे हैं। राज्य सरकार के अनुरोध के बाद सेना ने कहा है कि वह मलबे के बीच गहराई तक खोज अभियान चलाने के लिए वायुमार्ग द्वारा दिल्ली से आज ऑपरेटर्स के साथ जेवर राडर और 4 रेको राडर मंगवाएगी। उन्होंने कहा कि आज मुख्य रूप से सब तलाशने और जरूरी सेवाओं को बहाल करने का कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान का आज तीसरा दिन है। अब तक करीब 7000 श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें तथा पुलिस विभाग हेलीकॉप्टर की मदद से युद्ध स्तर पर बचाव कार्य में लगे हैं। अभी करीब 1000 श्रद्धालु जगह जगह फंसे हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह रुद्रप्रयाग के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से वर्चुअल बात की और राहत तथा बचाव कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने जिले के मुनकटिया और सोनप्रयाग के बीच 300 लोगों को पहाड़ी रास्ते पार करने में मदद की। चिरवासा में हेलीकॉप्टर की मदद से यात्रियों को निकाला जा रहा है। मुंबई और इसके उपनगरीय इलाकों में आज सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में जल प्रभाव की खबर मिली है, जिसका यातायात पर असर पड़ा है। हालांकि उपनगरीय रेलगाड़ी सामान्य रूप से चल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने सतारा जिले में अतिरिक्त तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई के उपनगरों और ठाणे जिले में आज तेज बारिश की आशंका के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी और कोल्हापुर जिले में बहुत तेज बारिश होने का अनुमान के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना और नादिया जिले के कुछ क्षेत्रों में बृहस्पतिवार शाम से हो रही लगातार बारिश से जल प्रभाव की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण 24 परगना जिले में सामान्य जीवन अस्त व्यस्त है। कल रात से 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त तक 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर होंगी। विदेश मंत्रालय में पूर्व मामलों के सचिव जयदीप मजुमदार ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि यह फिजी और तिमोर लेस्ते के लिए भारत की राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। आज 14वां भारतीय अंगदान दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन ने आज नई दिल्ली में अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उन परिवारों को समर्पित किया जिन्होंने ब्रेन डैमेज घोषित होने के बाद अपने परिवार के सदस्य के अंग दान कर दिए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बी के पाल ने अंग दान के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने देशवासियों से मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से अंग प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की। अंग प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में अंगदान के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने और लोगों का जीवन बचाने का अनुरोध किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा, राज्य तथा चिकित्सा संगठनों के वरिष्ठ डॉक्टर कार्यक्रम में शामिल हुए। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों ने हाल ही की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन करने और 9 सूत्री मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए कल से देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। वे आज देश में धरना भी करेंगे। भेदभावरोधी विद्यार्थी आंदोलन के 2 समन्वयकों ने कल विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से कार्यक्रम की घोषणा की। लगभग 2 सप्ताह के बाद बांग्लादेश में कल विभिन्न स्थानों पर हिंसा दोबारा भड़क गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। इस बीच पत्रकारों ने पिछले महीने कोटा आंदोलन को कवर कर रहे 2 पत्रकारों की मौत के मद्देनजर लोगों को सजा देने को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कल शाम सत्तारूढ़ आवामी लीग के महासचिव और सड़क परिवहन मंत्री ओबेदुल कादर ने ढाका में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सुरक्षाकर्मियों को विद्यार्थियों को परेशान न करने और हिरासत में न रखने की निर्देश दिए गए हैं। अमरीका ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का फैसला किया है। यह बदलाव इसराइल द्वारा हाल ही में हमास और हिजबुल्ला के नेताओं पर किए गए हमले के जवाब में पश्चिम एशिया में बढ़ती हिंसा को लेकर हुआ है। इन मामलों के बाद लगातार जवाबी कार्रवाई की धमकी मिल रही थी। पेरिस ओलंपिक के 8वें दिन आज भारतीय निशानेबाज मुन भाकर ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मात्र 3 अंक से कांस्य पदक से चूक गई। उन्होंने फाइनल मुकाबले में 4थे स्थान से संतोष करना पड़ा। मुन पेरिस ओलंपिक में पहले ही 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच चुकी है। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ी आज तीरंदाजी, मुक्केबाजी, नौकायन और गोल्फ के मैदान में उतरेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।